वचन
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर। कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास योएल किस प्रकार इसराइलियों को अर्थात यहूदा वासियों को अंतिम समय के बारे में बता रहा है, प्रभु के दिन के बारे में, और उनसे कह रहा है कि उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है, रोने की आवश्यकता है, उपवास करने की आवश्यकता है ताकि वे परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें ताकि परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा भी हम सबों को आशीषित करने पाए। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर इस समय आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनने के लिए तैयार हैं, आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम सब आपके वचन को योएल नबी की पुस्तक में से सीखते हैं, सुनते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो आपका जीवित वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, मेरे जीवन से भी बोलने पाए, बातचीत करने पाए। हम सबको आप सिखाएं, हम सबसे आप बातचीत करें। हाँ प्रभु, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, किसी न किसी रूप में, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, नौकरी की तलाश में, वैवाहिक जीवन की तलाश में। हाँ प्रभु, हमारी विनती है कि उन सब की आप सहायता करें, हर एक के पापों को आप क्षमा करें, उनके जीवन में आप चंगाई दें, ताकि प्रत्येक स्वस्थ भला चंगा होकर आपको धन्य कहने पाए। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहूदा वासियों को पुकारता है कि वे मन फिराकर उसकी ओर आ जाएं। जी हाँ, उपवास करें, रोएं और विलाप करें, अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ें। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, वह विलंब से क्रोध करता है, वह करुणा निधान है जो दुख देकर पछताता है। वह आशीष देगा और इसराइल में फिर परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए अन्न और अर्घ के लिए दाख मधु होगा। परंतु दूसरी ओर उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। ऐसे परिस्थितियों में अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे योएल नबी की पुस्तक 2:14 लिखा हुआ है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर फिर से तुम्हारे खेतों और दाख की बारियों को आशीष देगा और तुम्हारे पास अर्घ चढ़ाने तथा बलि चढ़ाने की सामग्री होगी। कब? जब आप अपने मन को फिराएंगे और उसके पास आएंगे तब। यद्यपि यहाँ अर्घ चढ़ाने का उल्लेख है, परंतु लय व्यवस्था में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अर्घ चढ़ाने का अर्थ है कि वे अन्य बलिदानों पर दाख मधु डालते थे जो भाप बनकर उड़ता था। आपको स्मरण होगा कि पौलुस कहता है, मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। प्रभु यीशु के बलिदान पर, जी हाँ, वह अपने आप को यहां तक समर्पित करता है कि वह मरने के लिए भी तैयार है। योएल नबी की पुस्तक 2:15 में लिखा हुआ है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मेरे मित्रों, हमने इसी अध्ययन में पहले देखा है कि नरसिंगा या तुरही फूंकने का अर्थ क्या है। तुरही फूंकने का अर्थ था सभा बुलाना या चेतावनी देना। 1 में चेतावनी की तुरही फूंकने का उल्लेख है, परंतु यहां सभा बुलाने के लिए तुरही बजाने की चर्चा है। उद्देश्य यह है कि सभा परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर की ओर मन फिराए। जी हाँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी और भला है और उन्हें स्वीकार करने को तैयार है जो मन फिरा करके उसकी ओर आते हैं। चाहे आप हो या मैं, परमेश्वर चाहता है कि मन फिरा करके उसकी ओर आ जाएं। तब हम आगे देखते हैं, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने केवल आनंद के पर्व दिए थे, उन्हें आनंद मनाते हुए उसकी उपस्थिति में आना होता था, परंतु अब क्योंकि उन्होंने पाप किया है और परमेश्वर से बलवा किया है, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है, उन्हें उपवास करना है और एक चित्त एकजुट होकर उसे पुकारना है, उसकी ओर फिरना है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें यह मानना होगा कि हम पापी हैं और पापों से मन फिराना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं और अब परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं तो आपको उसे पुकारना है, वह तुरंत आपको बचा लेगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको कलीसिया की सदस्यता नहीं लेना है, किसी आराधना विधि का पालन नहीं करना है, बस उस पर विश्वास करें। आपको उसे कुछ चढ़ाने की प्रतिज्ञा भी नहीं करनी है, आपको केवल पापी रूप में ही प्रभु यीशु के पास आ जाना है। मेरे प्रियो, आज सबसे दुखद बात तो यही है कि मनुष्य अपने आप को पापी, अपने आप को दोषी नहीं पाता है। वह अपने जीवन को नहीं झांकता है, परंतु दूसरों को देखता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को झांके, अपने आप को देखें और देखें कि मैं पापी हूं। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूं और उसके पास आते हैं, तब वह हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार भी करता है। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है कि सुसमाचार सुनाने का मूल शब्द का अर्थ है तुरही। नए नियम का तुरही फूंकना सुसमाचार है जो हमें संसार को सुनाना है। सियोन में तुरही फूंको, इसका अर्थ है सभा बुलाना, बेदी की पुकार सुनकर आगे आना। एक पावन दल होता है, वे प्रकट करते हैं कि वे अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु के पास आते हैं। यह एक अति गंभीर बात है, इससे हल्की बात हमें नहीं समझना है। मैं फिर कहता हूं कि वेदी के पास चले जाना, पछताव करना मन फिराव नहीं है। मेरे प्रियो, आपको यू टर्न लेना है, आपको उसे फिर करके नई दिशा में अर्थात संसार से फिर करके परमेश्वर की ओर अग्रसर होना है, उसमें आपको बढ़ना है। एक बार मेरे प्रचार के बाद एक युवा दंपत्ति सामने आया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप पहली बार सामने आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम हर रविवार सामने आते हैं। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की संपूर्ण आशीष मिले। मैंने कहा, आप सोचते हैं कि ऐसा करने से आपको वह सब कुछ मिल जाएगा? उन्होंने कहा, हम आशा करते हैं। तो मैंने कहा, तो क्या आपको आशीषें मिली है? उन्होंने कहा, नहीं। यदि मैं आपकी जगह होता तो निश्चय ही निराश हो जाता। शायद यह उचित तरीका नहीं है। आप मनुष्य का मार्ग अपना रहे हैं जबकि परमेश्वर का मार्ग अलग है। जी हाँ, परमेश्वर आपको भलाई और अनुग्रह प्रदान करना चाहता है, वह आपका उद्धार करना चाहता है। इसलिए आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उसका तरीका अपनाना होगा। परमेश्वर के पास कोई भी प्रभु यीशु के बिना नहीं आ सकता है। स्वर्ग का एकमात्र द्वार वही है, आप इसे लिख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में भी पढ़ते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मेरे प्रियो, उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु के द्वारा है, क्योंकि प्रभु यीशु हम मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मरा और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया, जिसकी सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, मानव जाति को मिलने चाहिए थे, उसने अपने ऊपर उन पापों का क्लेम ले लिया, दोष ले लिया, और वह आपके बदले में मरा, मेरे बदले में मरा, ताकि हम जीवन पाएं, उस भयानक दर्द से, उस मृत्यु से बच जाएं। इसलिए वही मेरा उद्धार करता है, क्योंकि वह मरा और मरा ही नहीं रहा, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज भी जीवित है, और यही कारण है कि वह मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। क्या आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप उसकी ओर आ सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक 2:16 में आगे हम पढ़ते हैं, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूतपियों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। लिखा है, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूतपियों को भी इकट्ठा करो। अबोध शिशुओं को बुलाने का अर्थ है कि उनकी माताएं भी आएं। नवविवाहितों को भी सभा में आना था। वहां नवविवाहित पुरुष को युद्ध में न जाने का प्रावधान था। उसे अनेक प्रकार की छूट दी गई थी। मेरे विचार में वहां विवाह करने का लाभ भी अलग है। परमेश्वर का कहना है कि हर एक व्यक्ति वहां पर आए। तब हम आगे पढ़ते हैं योएल 2:17 में, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। मेरे मित्रों, यहोवा के भवन के याजकों को विलाप करना था। देखिए, योएल यरूशलेम में है, अर्थात वह दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था। उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। इसराइल आज तक देश देश में तीतर बीतर है। यद्यपि उनके पास स्वतंत्र राष्ट्र है, उनकी अपनी राष्ट्रीय ध्वजा है, वे आज भी संसार के राष्ट्रों के अधीन हैं। उनके देश में अनेक समस्याएं हैं और रहेंगी भी, क्योंकि वे भविष्यवाणी के आधार पर अभी अपने देश में नहीं हैं। जिस दिन परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा, उस दिन उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उनकी पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने कभी कहा था कि मूसा उन्हें जंगल से लेकर चला और ऐसा स्थान पर लाया जहां तेल नहीं है। यदि वह पुराने नियम में विश्वास करती तो जान जाती कि उनकी अगुवाई परमेश्वर करता था, मूसा नहीं। दिन में बादल और रात में आग का खंभा, जी हां, उन्हें तेल के क्षेत्र में न बसाने में परमेश्वर का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। यदि ऐसा होता तो उन्हें अपना देश कभी नहीं मिलता। इसराइल को वास्तव में तेल की नहीं, पानी की आवश्यकता है। परमेश्वर के दंड के कारण उनके पास पानी नहीं है। मूसा ने कोई गलती नहीं की थी, वह तो केवल परमेश्वर के निर्देशों का पालन कर रहा था, और परमेश्वर कभी भूल नहीं करता। लिखा है, लोग आपस में क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहां है, उनका परमेश्वर कहां रहा। वे सोचते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी वही प्रश्न है। इसराइल भ्रमण के समय बहुत सारे लोग वहां के लोगों से बातचीत करते हैं। एक ने उससे कहा, आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, तो वह हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है। तब एक व्यक्ति ने उनसे कहा, स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि आज आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं। जब तक आप मन फिराकर उसकी ओर नहीं फिरेंगे, तब तक वह आपके साथ अपनी चुनी हुई प्रजा का सा व्यवहार नहीं करेगा। आज परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। वह आपके और हमारे बीच से अपने नाम के निमित्त एक समूह तैयार कर रहा है। जी हाँ, आप मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं जो पुरानी हो चुकी है। आप आज परमेश्वर के संबंधों में नहीं हैं। आधुनिक निकाय जो परमेश्वर ने चुना है वह कलीसिया है। परमेश्वर उन सब को आमंत्रित करता है जो इच्छा रखते हैं कि अपनी कलीसिया में जोड़े। मेरे प्रियो, इसराइल परमेश्वर से दूर हो गया है। वे शराब पीते हैं और न्याय बिगाड़ते हैं। इसी बीच उन पर प्राकृतिक आपदा आ पड़ती है। टिड्डियों ने उस देश पर आक्रमण किया और उनकी तीनों मुख्य फसलें गेहूं, दाख और अंजीर नष्ट हो गई। यूएल उनसे कहता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करते हुए, विलाप करते हुए आ जाएं। तो परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, उन्हें आशीष देगा और उनके पास परमेश्वर के भवन में बलि और अर्घ चढ़ाने की सामग्री भरपूरी से मिलेगी। वे फिर से समृद्ध हो जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे उद्धार की प्रतिज्ञा। अब वह वास्तव में भविष्य की चर्चा करता है। यहां शब्द तब पर ध्यान दें। यह शब्द बार बार आता है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 में लिखा हुआ है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। ध्यान दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय में प्रभु यीशु ने तब शब्द का प्रयोग किया था, जो भविष्य में महाक्लेश के संदर्भ में था। महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब इन दोनों घटनाओं के मध्य का समय वह समय होगा कि परमेश्वर अपने देश के लिए जल उठेगा और अपनी प्रजा की सुधि लेगा। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 पद में आगे लिखा हुआ है, यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर उन्हें अन्न, तेल और दाख मधु देगा। वे तृप्त किए जाएंगे और अन्य जातियों में निंदा का कारण नहीं होंगे। रूढ़िवादियों में भी कट्टर रूढ़िवादी कभी नहीं कहेगा कि आज यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आज इसराइल की जनसंख्या का अधिकांश भाग इसराइल में नहीं है। इसराइल देश से अधिक यहूदी तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में है। रूस में भी बहुत अधिक यहूदी हैं। यह भविष्यवाणी निश्चय ही भविष्य संबंधित है। प्रभु के दिन से जो अंधकार से आरंभ होकर प्रभु राज तक का समय होगा, जब मनुष्य के विद्रोह का दमन किया जाएगा और प्रभु राज का आरंभ होगा। मेरे प्रियो, अब हम एक विशेष युग में हैं और हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएं, क्योंकि एक देश हमारे लिए भी रखा गया है जो अनंत काल का देश है, जो परमेश्वर के निकटता में रहने का समय होगा। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस समय आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आज हम इसराइलियों के इस कहानी के द्वारा या इस पुस्तक के द्वारा हम देख रहे हैं कि वे परमेश्वर से अलग हो गए हैं। वे रूढ़िवादी और कट्टर हो गए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने जीवन में आज तक प्रभु यीशु को नहीं जाना है, उसके उस उद्धार का आनंद प्राप्त नहीं किया है, आज आपके लिए भी अवसर है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं, अपने पापों को मान लें और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु की ओर आ जाएं, क्योंकि वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपको उद्धार देना चाहता है। वह आपके जीवन में शांति और आनंद देना चाहता है। आप कोई भी क्यों ना हो, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जी हाँ, यदि आपने कोई पाप किया है, चोरी की है, हत्या किया है, व्यभिचार किया है या और भी कोई काम किए हैं, जो पाप है उसकी मजदूरी मृत्यु है और यह निश्चय ही आपको मिलनी चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने आपके उन पापों की सजा अपने ऊपर में ले ली और वह आपके बदले में मर गया। इसलिए जब आप उसके पास में आते हैं और अपने उन पापों के लिए पश्चाताप करके उससे क्षमा मांगते हैं, तो वह आपके पापों को क्षमा कर देता है, डिलीट कर देता है, मिटा देता है, ताकि आप एक नए व्यक्ति बन जाएं। और यही कारण है कि पौलुस कुरिन्थ की पत्री में कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जी हाँ, परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है। कब? जब आप उसके पास में आते हैं, तब। वह आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता, परंतु वह चाहता है कि आप अपने मन को प्रभु के पास लाएं। श्रोता मित्रों, आइए आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन को हम जांचें और देखें कि आज मेरा जीवन कहाँ है। क्या आज भी मैं उस पाप के दलदल में डूबा हूँ, प्रतिदिन बुराइयां और बुराइयां ही करता जा रहा हूँ, या मेरे जीवन में कोई अच्छापन भी है? क्या मैं तनाव में रहता हूँ, परेशानी में रहता हूँ, या किसी प्रकार की दुविधा में हूँ? तो क्यों? आइए हम सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दें और निश्चय जाने कि वह आपको शांति देगा, आनंद देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आपके निर्णय पर आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिला।